ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नववर्ष 2025 में मंत्रिमंडल की पहली बैठक किसानों को समर्पित है। मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि किसानों को 1,350 रुपये मूल्य पर 50 किलोग्राम की बोरी मिलती रहेगी। इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।
मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा, और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले।
सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से विश्वविद्यालय और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने आज भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाल लिया। दिसंबर 1986 में लड़ाकू पायलट के तौर पर वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। 38 वर्ष की सेवा के दौरान उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे। भारत और पाकिस्तान ने आज अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की रोकथाम से संबंधित समझौते के अंतर्गत ये आदान प्रदान किया गया। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में विभिन्न राजनयिक माध्यमों से दस्तावेज एक दूसरे को सौंपे गए। श्रीलंका की नौसेना ने एक वर्ष पहले गिरफ्तार किए गए 20 मछुआरों को आज रिहा कर दिया। ये मछुआरे कोलंबो से एक विमान से चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने इनका स्वागत किया। इन मछुआरों की रिहाई केंद्र और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के बाद हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इस घटना में 7 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब श्रद्धालुओं को अक्कलकोट ले जा रही एक जीप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। गुजरात सरकार ने उत्तर गुजरात के मौजूदा बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये गुजरात का 34वां जिला होगा। पूरे विश्व में आज नव वर्ष का स्वागत उमंग और उल्लास के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। न्यूयॉर्क में भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चीन की झू जिनर को वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हराया। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में आज श्राची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। ये मैच 8:15 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में श्राची रार बंगाल टाइगर्स दूसरे और टीम गोनासिका 6ठे स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।